الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل رب زدني علما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا زدنا علما. इस क्लास में हम अपने पीर अपने शेख पीर जुल्फ़िकार अहमद नक्शबंदी रहमतुल्लाह की किताब मिसाली मर्द में से पढ़ते हैं, और जो मौजू चल रहा है वो है मिसाली शागिर्द का। ये इस किताब का आखिरी उनवान है। इसमें हम आखिरी क्लास में 201 पेज के ऊपर थे, और जो मौजू चल रहा था इसके अंदर वो था कि बेअदबी ने हिदायत से महरूम कर दिया। तो इंसानों के सर्कमस्टांसेस हालात के ऊपर डिपेंड करता है कि अल्लाह ताला ने उनको कैसी नेमतें अता फरमाई हैं। तो अगर ऐसा मामला हो कि नेमत जो है वो किसी को बहुत बड़ी मिली है, तो उस नेमत की नाकदरी से जो है ना फिर सज़ा भी इंसान को बड़ी मिल जाती है। तो बहरहाल एक वाकया लिखा था कि शागिर्द ने जो है वो पैर पर सॉरी पैर जो है वो किताब के ऊपर रख दिया अपने उस्ताद के कहने पर। तो मतलब उस्ताद ने तो कहा था कि जी हाथ रख दो, लेकिन उसने पैर रख दिया, तो वो जो है ईमान से महरूम कर दिया गया। बहरहाल इसके ऊपर काफ़ी बात हो चुकी है, आगे चलते हैं कि अकल हलाल का इहतमाम। अकल कहते हैं खाने को, और हलाल खाने का इहतमाम करना। उसूल इल्म में अकल हलाल बहुत अहमियत रखता है। जो लोग दीन का इल्म हासिल करने वाले वाले हैं, जब तक वो अकल हलाल का इहतमाम नहीं करेंगे, उनको इल्म का नूर नसीब नहीं होगा। तो अकल हलाल के अंदर दो चीज़ें आ जाती हैं। एक तो है कि इंसान की कमाई कैसी, ठीक है, यानी उसने जो है वो हराम तरीके कमाया है या हलाल तरीके से माल कमाया है। अगर हराम तरीके से माल कमाया और फिर उससे जो है वो हैंड स्लॉटर्ड जबीहा चिकन खरीद करके खा रहा है या सब्जी खरीद करके खा रहा है, तो वो अगरचे के है तो वो हलाल, लेकिन हराम माल से खरीदी गई है तो उसको भी फिर अकले हराम कहेंगे, ठीक है। और दूसरा दर्जा इसके अंदर ये है कि इसने कमाया तो हलाल है, लेकिन जो ये खाना खा रहा है वो खाना जो है वो शरीयत के तकाजों के मुताबिक नहीं तैयार किया गया है। जैसे उसके अंदर अल्कोहल शराब जो है वो मिक्स हुई हुई है, किसी पीने की चीज़ के अंदर शराब मिक्स हुई हुई है या शराब ही है, तो हलाल पैसे से शराब खरीद करके पीना जो है ये शराब को हलाल नहीं कर देता, बल्कि शराब हराम ही रहेगी। उसी तरीके से जो अगर जानवर का गोश्त खा रहा है, तो अगर सुअर का गोश्त है तो वो हराम है, चाहे हलाल पैसे से खरीद के खाया हो। तो ये बदीही सी आजकल बातें हैं जो कि इंशाल्लाह सबको पहले से पता होंगी, बस एक रिमाइंडर की नीयत से ये बात आपके सामने रख दी। तो अब इसके आगे जो है वो हजरत ने एक वाकया नकल फरमाया, जो कि अक्सर अपने बयान के अंदर तो नकल किया करते थे। तो रेस्टोरेंट का खाना फिल्म के नूर में रुकावट। एक मरतबा हमारे साथ फरमाते हैं कि एक वाकया पेश आया, बैरून मुल्क में हमारा एक मदरसा था, गालिबन अमेरिका की बात कर रहे हैं, कि वहाँ पर एक मदरसा था। एक मरतबा मैं उसमें पढ़ने वालों की बच्चों की जायजा रिपोर्ट देख रहा था कि किस बच्चे ने कितना पढ़ा। हमारे एक दोस्त जो मेडिकल डॉक्टर थे, उनके बच्चे का नाम मेरे सामने आया, तो उसकी जायजा रिपोर्ट पर बहुत थोड़ी मिकदार खानदगी की लिखी हुई थी, यानी उसने बहुत कम पढ़ा था मदरसे में आकर के। खानदगी मतलब बहुत कम उसकी तालीम हुई थी मदरसे में, और साथ ये भी लिखा हुआ था कि इस बच्चे को हम पढ़ाते हैं और ये भूल जाता है, फिर हमें बार बार पीछे से शुरू करवाना पड़ता है। मुझे इस बात पर हैरत हुई। मैंने उसके उस्ताद को बुलाकर पूछा कि ये क्या मसला है, तो उस्ताद ने कहा कि मैं इस पर बहुत मेहनत करता हूँ, लड़का जहीन भी है, मगर पता नहीं क्या वजह है कि ये एक सफ़ा आगे चलता है फिर पीछे से सारा भूल जाता है, मुझे फिर पीछे से शुरू करवाना पड़ता है, फिर दो चार सफ़े पढ़ाता हूँ तो दोबारा पीछे से शुरू करवाना पड़ता है, ठीक है। लगता ऐसा है कि ये नाजरा कुरान मजीद पढ़ रहा था, ठीक है, यानी तिलावत ही ये सीख रहा था अभी पढ़ना ही सीख रहा था अभी। हिफ्ज वगैरह की बारी नहीं आई थी, नौबत नहीं आई थी, और दीनी उलूम की नौबत नहीं आई थी, बल्कि सिर्फ जो है वो नाजरा कुरान मजीद पढ़ना, पढ़ने का ही मामला था, और उसी में ये पीछे भूल जाता था, यानी कैसे अल्फाज का की हिज्जे कैसे करनी है, कैसे जो है वो अल्फाज को आपस में जोड़ना है, कैसे पढ़ना है, कैसे तिलावत करनी है, ये सब भूल जाता था। हमने उस लड़के को बुलाया और उससे पूछा कि आपकी पढ़ाई का क्या मसला है, तो उसने कहा कि मैं अपने स्कूल में सबसे आला कारकर्दगी दिखाने वाला तालिब इल्म, स्कूल की परफॉर्मेंस पे जिन बच्चों को सदर की तरफ से अवार्ड मिलता है, यानी प्रेसिडेंशियल अवार्ड्स को कहा जाता है, तो मैं उनमें शामिल हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि मैं कुरान पाक पढ़ने में इतना नालायक क्यों, ठीक है, अल्लाह का कलाम पढ़ने में इतना नालायक, और जो फनून थे, दुनियावी उलूम थे, जो कि स्कूल कॉलेज के अंदर पढ़ाए जा रहे थे, उसके अंदर इतना जहीन। तो कहता है कि मैं मेहनत तो मैं बहुत करता हूँ, लेकिन ये मेरे जहन में टिकता नहीं है, भूल जाता है, क्लास में भी उस्ताद मुझे पढ़ाते हैं और फिर क्लास के बाद भी मैं उस्ताद से पढ़ता हूँ, वक्त भी ज्यादा लगाता हूँ, लेकिन न जाने क्यों मेरा जहन दीन के इल्म में नहीं चलता, हालांकि साइंस में मैं इतना स्मार्ट हूँ कि प्रेसिडेंट का अवार्ड लेता हूँ, यानी नेशनल लेवल के ऊपर अवार्ड लेता था। हमें और ज्यादा फिक्र हो गई कि ये बच्चा स्कूल में इतने अवार्ड लेता है, मदरसे में उसको एक सफा भी याद नहीं होता। हमने उस बच्चे से बातचीत की, अल्लाह से रुजू भी किया, दुआएं भी मांगी, चुनाचे अल्लाह ने दिल में बात डाली कि इस बच्चे से पूछें कि ये खाता क्या है। हमने उस बच्चे से प्यार से पूछा कि बताओ आपको क्या चीज पसंद है, तो उसने कहा कि मुझे मैकडोनल्ड के नगेट्स बहुत अच्छे लगते हैं। ठीक है, अब ये जो है वो बायकॉट का जमाना नहीं था, और ये पाकिस्तान, इंडिया या मिडिल ईस्ट की बात नहीं हो रही, ये अमेरिका जैसे मुल्क की बात हो रही है। ठीक है, तो वहां पर मैकडोनल्ड्स खाता था ये, और फुला रेस्टोरेंट की फुला चीज अच्छी लगती है। एक बयान में हजरत ने इस तरह भी फरमाया था कि थैंक्स गॉड इट्स फ्राइडे, TGIF, ये भी बड़ा एक मशहूर चेन ऑफ रेस्टोरेंट्स है वहां पर, तो TGIF से मैं ये खाता हूँ, और मैकडोनल्ड से मैं ये खाता हूँ, और KFC से मैं ये खाता हूँ, ये सब उसने गिनवा दिया। ठीक है, और शुक्र है कि आज जुमे का दिन है, ये शुक्र है आज जुमे के दिन है, इन्होंने ना वो TGIF का जो है वो उर्दू में ट्रांसलेशन कर दिया है, गालबन जिन्होंने किताब को छापा है ना, उन्होंने यानी लफ्जी तर्जुमा जो है वो रेस्टोरेंट के नाम का कर दिया है। तो हम यानी TGIF जो है वो जाते हैं, और शाम को यानी अम्मी कहती हैं, अब्बू कहते हैं कि आज शाम का खाना बाहर खाएंगे, तो अम्मी रात का खाना घर में नहीं बनाती, वो सिर्फ दोपहर का खाना बनाती, यानी उसके घर में ना रोजाना का यही मामला था, रात को अब्बू अम्मी और हम सब बच्चों को बाहर लेके जाते हैं, और रात का खाना तो हम बाहर ही कहीं खाते हैं। ठीक है, और ये इवन हमारे मुल्कों के अंदर भी बहुत से घरानों के अंदर ये रिवाज होता है कि एक वक्त का खाना जो है ना उन्होंने रखा हुआ है कि वो बाहर ही खाएंगे, घर का खाना तो खाते ही नहीं हैं। अब हमें अंदाजा हो गया कि मसला क्या है, चुनाचे हमने डॉक्टर साहब उनकी बीवी को कॉल किया कि आप टीचर पेरेंट मीटिंग, यानी पेरेंट टीचर मीटिंग जो होती है उसमें आए, वो दोनों आ गए, तो हमने उनसे कहा कि बात यह है कि आप अपने बच्चे को घर ले जाए, हम उसको नहीं पढ़ा सकते। ये सुनकर डॉक्टर साहब की आंखों से तो आंसू आ गए, और वो कहने लगे कि हजरत मेरे बेटे को आप इस मदरसे से खारिज कर रहे हैं। मैंने कहा ये असल वजह यह है कि आप एक ऐसा काम कर रहे हैं कि जिसकी वजह से इल्म का नूर उस बच्चे के दिल में टिक ही नहीं रहा। आप अगर मेरे साथ वादा करें कि इस बच्चे को कभी भी बाहर के रेस्टोरेंट का खाना नहीं खिलाएंगे, तो फिर हम इसको पढ़ाएंगे और इस पर मेहनत करेंगे। डॉक्टर साहब ने कहा ठीक है, अब मैं ऐसा नहीं करूंगा, और उनकी अहलिया ने भी वादा किया कि अब मैं अपने बच्चे को घर का खाना खुद पका के खिलाऊंगी। मैंने कहा कि आप नमाजी औरत हैं, पर्देदार हैं, लिहाजा आप जो खाना पका कर इसे खिलाएंगी उसमें बरकत होगी। चुनाचे माँ बाप ने बच्चे को घर का खाना खिलाना शुरू कर दिया। अल्लाह की शान देखें कि अगले एक साल में उस बच्चे ने पूरा कुरान मजीद मुकम्मल कर लिया, हालांकि पहले एक साल में वो कायदा भी खत्म नहीं कर सका था। इससे मालूम होता है कि हुसूल इल्म में अकल हलाल का बहुत अमल दखल होता है, जो तुलबा अकल हलाल का एहतमाम करते हैं अल्लाह ताला उनके सीनों में इल्म का नूर डाल देते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है ना वो मामला क्लियर कट हराम वाला मामला, ठीक है, क्योंकि अमेरिका के अंदर जो है ना वो झटके का गोश्त होता है, वो गोश्त हलाल किसी सूरत नहीं होता, अनफॉर्चुनेटली जो है वो बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कि उसको हलाल किसी ना किसी तरीके से उसका फतवा दे देते हैं, तो भाई उनका और अल्लाह ताला का मामला है, हमारा ये मामला है कि हमें पता है कि ये चीज जो है वो हराम है, तो इस वजह से हम उसको हलाल समझ के नहीं खा सकते। ठीक है, अब कोई इसके ऊपर ये कह सकता है कि भाई अरब लोग जो है वो तो वहाँ पे सारा खा लेते हैं, ठीक है ना। हमें खुद जो है वो यमनी भाइयों ने अमेरिका के अंदर बोला कि भाई ये सिंस चिकन इज हलाल सो इट डजेंट मैटर हाउ यू स्लॉटर इट, किस तरीके से उसको काटा गया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, भाई चिकन जो है वो हलाल जानवर है तो बस अब उसको खाना भी हलाल है। अब वो अरब जो है ना वो कुरान के हाफिज भी होंगे, ऐसा नहीं है कि वो कुरान के हाफिज नहीं होंगे, बहुत सारे अरब आपको कुरान के हाफिज मिलेंगे और वो झटका भी खाते हैं, ठीक है। तो भाई इस तरह का मामला जो है ना वो कोई एब्सोल्यूट नहीं होता, अल्लाह ताला किसी को ढील भी दे देते हैं कि वो गलत काम करने के बावजूद अल्लाह ताला उसको जो है ना वो कुरान मजीद पढ़ने की तौफीक देते हैं, ठीक है ना। तो किसी काम की तौफीक मिल जाना, पहली बात तो ये है याद रख कि किसी नेकी के काम को करने की तौफीक मिल जाने का मतलब ये हरगिज नहीं है कि वो नेकी आपसे कबूल भी हो रही है, वो नेकी आपसे कबूल भी हो रही है ये कोई गारंटी नहीं है। जस्ट बिकॉज यू आर एबल टू डू समथिंग राइट, डू समथिंग गुड, इट डजंट मीन इट्स बीइंग एक्सेप्टेड, ठीक है ना। ये भी हमारे मशायख जो है वो हमें बार बार याद दिलाते हैं, ये वाला पॉइंट, ये वाला उसूल। और बल्कि हमारे हजरत तो कोट भी करते हैं, हजरत अताउल्ला इस्कंदरी रहमतुल्लाह अलैह, अताउल्ला इस्कंदरी रहमतुल्लाह अलैह की ये वाली जो बात है ना ये बार बार हजरत कोट भी करते हैं, किसी काम की तौफीक मिल जाने का मतलब ये हरगिज नहीं है कि वो काम जो है ना वो कबूल भी किया जा रहा है, ठीक है। तो एक बात तो ये है कि भाई अगर वो खाना जो है वो हराम है और फिर उसके साथ साथ जो है कुरान मजीद को हिफ्ज करने की भी तौफीक मिल रही है तो जरूरी नहीं है कि वो हिफ्ज जो है वो कबूल भी किया जा रहा हो। और दूसरी बात ये है कि भाई अगर वो गलत फहमी की वजह से या किस भी वजह से उनके पास कोई जो है वो दलील है, गलत दलील है लेकिन दलील है, किसी जो है वो आलिम की जो है ना वो कही भी बात को वो फॉलो कर रहे हैं, अब वो अवाम में से हैं, अवाम का काम ये है कि वो जिनको उलमाए हक मानते हैं वो उनके फतवे के ऊपर अमल करें, ठीक है ना। तो हो सकता है कि उनके साथ ये वाला मामला हो रहा हो कि भाई वो अपने उलमा को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अब जो है वो उलमा का तो मामला अलग होता है लेकिन अवाम का मामला अलग होता है, ठीक है। तो वो उसको हलाल समझ करके खा रहे हैं ना और उसके ऊपर उनके पास उलमा का फतवा भी मौजूद है, तो उनके साथ फिर अलग स्टैंडर्ड्स अप्लाई किए जाएंगे, उनके जो है ना वो उनको हो सकता है नेकी की तौफीक भी मिल रही है और साथ साथ उनकी नेकी कबूल भी हो रही है, हमें नहीं पता, ठीक है ना। ये यानी ये एक पॉसिबिलिटी है, ये एक एक इहतमाल है इसका, मैं नहीं कह रहा कि ऐसा ही होता है, ठीक है ना। अब हमारे कुछ मुफ्ती आजाद जो है वो उसके ऊपर नाराज ना हो जाए कहीं, ये नहीं है कैसे हो सकता है भाई, मैं इहतमाली दर्जे में बात कर रहा हूँ, सही है। तो बहरहाल कि दूसरों का मामला उनके साथ है, हमारा मामला हमारे साथ है, हमारे तो मुफ्ती हजरात ने इसका फतवा नहीं दिया वाला कि झटका खाने के, चाहे वो मुर्गी झटके से कटी हो चाहे वो बकरी जो है वो दो टुकड़े करके उसको जो है वो स्लॉटर हाउस के अंदर काट दिया गया हो फिर भी वो हलाल है क्योंकि वो बकरी है, हमारे तो उलमा ने पता नहीं दिया है ना, ठीक है। तो हमारे लिए अलग मामला होगा, उनके लिए अलग मामला होगा, तो इस वजह से ना इसके अंदर बहुत सारी वेरिएशन भी हो सकती हैं, लेकिन हमने अपना मामला देखा, ठीक है। और यहाँ पर जो है ना वो इस बच्चे का जो मामला था वो भाई यानी हजरत के मदरसे में आ रहा है, हमारे उलमा के साथ उसका उठना बैठना है, तो वो अपने जो उलमा है उनकी बात क्यों नहीं मान रहा, ठीक है। अपने उलमा की बात मानने के ऊपर हमारे साथ हिसाब किताब किया जाएगा, ये नहीं कि भाई दूसरे किसी आलम ने क्या फतवा दिया, मिसाल के तौर पर बहुत सादी सी मिसाल है कि भाई आप जो है वो आप अगर हनफी उलमा के साथ उठते बैठते हैं, आपके इलाके के उलमा जो है वो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह फॉलो करते हैं, तो अब इमाम अबू पिछली क्लास में ये बात हुई है ना कि भाई नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत जो है वो कहाँ पे हाथ बांधना है, नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत जो है वो नाफ के ऊपर हाथ बांधना है, ये किसने कहा, ये इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के हम मसलक उलमा ने कहा, उलमाए अहनाफ ने कहा कि नाफ के ऊपर हाथ बांधना, ठीक है ना। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के जो मसलक के उलमा है उन्होंने कहा जी सीने के ऊपर हाथ बांधना, सही है। अब एक शख्स जो है वो उसके उलमा जो है वो उलमाए अहनाफ हैं, हनफी फिर को फॉलो करते हैं, तो अब इसके लिए लाजिम है कि ये अपने उलमा को फॉलो करें और नाफ के ऊपर हाथ बांधे नमाज के अंदर, अगर ये कहेगा कि नहीं मैं जो हूँ वो सीने के ऊपर हाथ बांधूंगा तो अब ये किसको फॉलो करें, इमाम शाफी को फॉलो करें, नहीं ये इमाम शाफी को फॉलो नहीं कर रहा, ये असल में नफ्स और शैतान को फॉलो कर रहा है, ये नफ्स और शैतान को फॉलो कर रहा है और इसके ऊपर इसको सजा मिलेगी, अगरचे कि वो अमल हो सकता है कि सुन्नत वही हो सकता है कि सुन्नत वही हो, सीने के ऊपर हाथ बांधना, यही सुन्नत हो, लेकिन ये किस वजह से ये काम कर रहा है? ये अपने अखड़बाजी की वजह से काम कर रहा है, ये अपनी अनानियत की वजह से काम कर रहा है, ये अपनी जिद की वजह से काम कर रहा है, यानी ये अपने नफ्स की वजह से काम कर रहा है। तो नफ्स की वजह से सुन्नत पर भी अमल कर रहा है ना, तो वो सुन्नत भी इसके लिए नुकसानदेह बन जाएगी अगर नफ्स की खातिर सुन्नत पे अमल कर रहा है, क्योंकि वो सुन्नत पे अमल तो बाई चांस हो गया है ना। असल में तो उसका मसला यह है कि ये नफ्स और शैतान की पैरवी करना चाहता है, किसी की मानना नहीं चाहता, किसी के सामने जो है वो झुकना नहीं चाहता। ठीक है, तो यही मामला जो है ना वो दूसरे मामलात में भी, यानी इवन खाने पीने के मामलात के अंदर भी ऐसा हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि है, लेकिन ऐसा उन मामलात के अंदर भी हो सकता है। बहरहाल, तो आगे टॉपिक भी उसी के मुताबिक है कि आमाल का दारोमदार नीयतों पर है, तुम किस नीयत से कौन सा वाला काम कर रहे हो। ठीक है, किसी नीयत से जो है वो दीन के किसी काम के ऊपर दुनिया की नीयत से अमल कर रहे हो तो तुम्हें सवाब मिलेगा, हरगिज नहीं। दीन के काम के ऊपर दुनिया की नीयत से अमल कर रहे हो तुम्हें सवाब नहीं मिलेगा, सजा मिलेगी। ठीक है जी, क्या लिखा है इन्होंने, क्या हसनातुल अबरार सय्यातुल मुकर्रबीन वाला मामला भी हो सकता है कि जो ज्यादा मुकर्रब होने का दावा करते हैं उनकी पकड़ भी वैसी होती है। जो ज्यादा मुकर्रब होने का दावा करते हैं उनकी पकड़ भी वैसी होती है। देखें, उसूल तो वही है जैसे कि आपने लिखा है, लेकिन इस वाकये के अंदर इस वाले उसूल को अप्लाई करना जो है ना वो बड़ा खींच तानना पड़ेगा उसके लिए, खींचना तानना और किसी तरीके से उसको फिट करना पड़ेगा इस वाकये के अंदर, बड़ा मुश्किल काम है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ना ये वाला उसूल जो है वो खामखा को फिट करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे मदरसे में पढ़ाने वाले एक डॉक्टर साहब हैं और उनके जो है ना वो बच्चे का मामला है, तो वहां पर वो हसनातुल अबरार और सय्यातुल मुकर्रबीन, ठीक है, तो भाई हर चीज, हर उसूल हर जगह तो नहीं फिट किया जा सकता। एनीवे, तो मुकर्रबीन इनमें से कौन है भाई, अबरार इनमें से कौन है भाई? डॉक्टर साहब अबरार हैं कि वो मुकर्रबीन हैं, और यानी अजीब तो गरीब किस्म का मसला हो जाएगा फिर उसके अंदर। खैर, आप आगे चलते हैं, अमाल का दारोमदार नीयतों पर है। तो फरमाते हैं कि जहन में एक और सवाल पैदा होता है कि क्या इल्म हासिल करते वक्त ये नीयत होनी चाहिए कि मैं आलिम बनूंगा और लोगों पर अपना इल्म जाहिर करूंगा कि मैं कितना बड़ा आलिम हूँ। तो उसका जवाब यह है कि ऐसी नीयत नहीं होनी चाहिए, यानी हरगिज नहीं होनी चाहिए। हजरत ने तो बड़े प्यार से बोलते हैं, नहीं होनी चाहिए, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इल्म हासिल करने के लिए हमेशा ये नीयत रखनी चाहिए कि इल्म हासिल करना इबादत है और मैं इबादत कर रहा हूँ। ठीक है, यानी इल्म हासिल करना इबादत है। इबादत किस चीज को कहते हैं? इबादत कहते हैं अल्लाह के हुक्म पर अमल कर। ठीक है, अल्लाह के हुक्म पर अमल करना, इसको इबादत कहते हैं। चाहे वो आप मुसल्ले पे खड़े होकर के अल्लाह के हुक्म पे अमल कर रहे हो, चाहे आप जो है वो अपने बिस्तर में लेट करके अल्लाह के हुक्म पे अमल कर रहे हो, चाहे आप जो है वो दफ्तर में कारोबार करके अल्लाह के हुक्म पे अमल कर रहे हो, सब का सब इबादत है, सब का सब इबादत है। ठीक है, और हमें इसी मकसद के लिए दुनिया के अंदर भेजा गया है, इबादत करने के लिए। ठीक है, तो इबादत इल्म हासिल करना अल्लाह का हुक्म है जी। जो फराइज का इल्म है, जिसको कि इल्मुल हाल भी कहा जाता है, इल्मुल हाल, ठीक है ना, वो फर्ज है हर मुसलमान मर्द और औरत के लिए हासिल करना। तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमतिन। ठीक है, तो वो वाला इल्म जो है ना हासिल करना फर्ज है, और जब फर्ज के ऊपर अमल किया जाता है तो इसी को इबादत कहा जाता है, क्योंकि फर्ज क्या है? अल्लाह का हुक्म है। ठीक है, तो अब जो है वो इल्म हासिल करना इबादत है, तो अब दूसरी चीजों में, यानी जो जो फर्ज इल्म नहीं है, फर्ज के अलावा जो इल्म है, यानी जो कि फर्ज किफाया के दर्जे के अंदर आ सकता है, अगर कोई और इल्म हासिल नहीं कर रहा है तो फिर पूरे कम्युनिटी में से किसी एक शख्स के ऊपर फर्ज किफाया होगा कम से कम इल्म हासिल करना। ठीक है, तो वो फर्ज किफाया के दर्जे में आ सकता है। दूसरा ये भी आ सकता है कि भाई अकायद की हिफाजत के लिए जो है वो अपना हिस्सा बटाना, ये भी अल्लाह ताला का हुक्म है, और जो है वो दूसरों के लिए खैर ख्वाही का जज्बा रखना कि भाई मैं इल्म हासिल करता हूँ ताकि दूसरों के लिए जो है वो खैर ख्वाही का सबब बन सकूँ, दीन के इल्म की हिफाजत का सबब बन सकूँ। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो, यानी यहाँ पर खेचतान का मामला चल सकता है कि सारे दीनी उलूम को हासिल करना जो है ना वो इबादत करार दिया जा सकता है। एक तो क्लियर कट इबादत हो गई ना, कि जो इल्म हाल है वो तो क्लियर कट इबादत है, उसमें तो कोई तावील की जरूरत नहीं है, कोई खींचतान करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इल्म हाल के अलावा जो तफसीर का इल्म है, हदीस का इल्म है, उसूल का इल्म है, अरबी अदब का इल्म है, बलागा का इल्म है, राइट, क्या ये भी इबादत है? क्या इनके लिए भी अल्लाह का हुक्म आया है कि जी आपने ये वाला इल्म भी हासिल करना है? तो उसके लिए थोड़ी सी खींचतान वगैरह करनी पड़ेगी कि वो भी सिचुएशंस के अंदर वो भी जो है वो इबादत बन जाएगा। खैर, तो ये नियत होनी चाहिए भाई। अच्छा, दूसरी बात ये है कि खैर वो तो इसमें कवर हो चुकी है ऑलरेडी, कि अपनी इस्लाह के लिए, ठीक है, अपनी इस्लाह के लिए, तो अपनी इस्लाह करना ये भी फर्ज है कि मैं गुनाहों से बच सकूं, लेकिन वो इस्लाह की का जो इल्म होता है वो इल्म हाल के अंदर कवर हो जाता है। फिर ये भी नियत हो कि मैं इल्म हासिल करूंगा ताकि नबी अलैहिस्सलाम की तालीमात का खुद भी वारिस बनूं, और फिर अपने करीबी रिश्तेदारों में से जो उसको हासिल करना चाहेगा मैं ये तालीमात उस तक भी पहुंचाऊंगा, ठीक है, तो यानी दूसरों की खैर ख्वाही। इन्नमल आमालु बिन्नियात के बाद ज़ादुत तालिबीन, जो हम सब के लिए माशाल्लाह पहली हदीस की किताब होती है, जब हम सीरियसली जरा हदीस पढ़ना शुरू करते हैं तो ज़ादुत तालिबीन, अल्लाह ताला ने इतनी कबूलियत अता फरमाई है उस किताब को, तो उसके अंदर सबसे पहली हदीस जो अल्लामा बुलंद शहरी रहमतुल्लाह अलैह ने नकल फरमाई, इन्नमल आमालु बिन्नियात, और उसके बाद दूसरी हदीस जो नकल फरमाई, अद्दीन नसीहा, दीन तो सरासर खैर ख्वाही का, ठीक है, तो दूसरी नियत क्या है? खैर ख्वाही, जैसे कि हम भी जब मिसाली मर्द और मिसाली औरत के इब्तदाई लेक्चर्स के अंदर आपको अगर याद होगा कि यही दो नियत है, इन्हीं दो नियतों से मिसाली बहू का टॉपिक भी बहू साहिबा सुने, मिसाली सास का टॉपिक सास साहिबा सुने, मिसाली खाविंद का टॉपिक जो है वो खाविंद लोग सुने, बेटे का टॉपिक जो है बेटे लोग सुने, क्या अपनी इस्लाह की नियत से मैं सुन रहा हूँ, ठीक है ना, अपनी इस्लाह की नियत से, दूसरों की तनकीद की नियत से मैं ये सब नहीं सुन रहा हूँ, ठीक है। और फिर दूसरी चीज ये कि खाली अपनी इस्लाह के बाद ये नहीं कि बस वहीं पर रुक गए, बस अपनी इस्लाह और बस उसके बाद और कुछ नहीं, नहीं, बल्कि दूसरों की खैर ख्वाही के लिए भी मैं सुन रहा हूँ कि मैं इस इल्म को जिससे मुझे फायदा होगा, मेरी इस्लाह होगी, मैं अपनी इस्लाह के लिए सुन रहा हूँ ना, तो सबसे पहले तो मेरी इस्लाह, लेकिन जब मेरी इस्लाह हो रही है तो अब मुझे अपने भाई बहनों की इस्लाह की भी फिक्र होगी कि उनकी भी इस्लाह हो जाए, वो भी नुकसान से बच जाए, वो भी गलत फहमियों से बच जाए, तो मैं ये इल्म जो यहाँ पे हासिल कर रहा हूं मैं दूसरों तक भी खैर ख्वाही की नीयत से पहुंचाऊंगा, ठीक है। तो यही जो है ना, फिर हर हर उलूम के अंदर यही दूसरी नीयत कि मैं दूसरों तक भी इस इल्म को पहुंचाऊंगा, जो उसको हासिल करना चाहेगा, यानी हम मैं मारपीट करके किसी को बिठा करके उसके ऊपर इल्म जो है ना वो उसके अंदर उंडेलूंगा नहीं, बल्कि मैं रगबत पैदा करने के लिए कुछ उनको तरगीब दूंगा, फिर उसके बाद जो इस तरफ रगबत शो करेगा तो मैं उसको ये इल्म सिखाऊंगा, ठीक है, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया है, नज़्ज़रल्लाहु इम्रा इम्रान समिअ मकालती फवाहा वहफिज़हा वबल्लगा, कि अल्लाह ताला हर उस बंदे को सरसब्ज़ शादाब रखे, नज़्ज़रल्लाहु इम्रान, ठीक है, हर उस बंदे को सरसब्ज़ शादाब रखे, यानी जीता रखे जैसे हम कहते हैं उर्दू के अंदर, जिसने मेरी कोई बात सुनी और याद रखी, यानी उसको हिफ्ज किया, उसको याद रखा, फिर उसे लोगों तक पहुंचाया, बल्लगा बलागुल मुबीन, ठीक है, लोगों तक पहुंचाया, इस नियत के करने से उसको सवाब भी होगा और इल्म भी हासिल होगा, ठीक है, यानी खुद कुछ हासिल करेगा तभी आगे पहुंचा सकेगा ना, जो खुद ही उसने बात नहीं समझी, खुद ही उसने बात जो है वो महफूज करके नहीं रखी, तो आगे कैसे पहुंचाएगा, तो इसका अपना तो फायदा लाजिमन है, लेकिन दूसरों का भी पहुंचाने का, फिर दूसरे जो है वो अगर कोई इसकी बात मान करके उस इन पे अमल करेगा तो इसको उसका सवाब भी मिल रहा होगा, क्योंकि हमारे दीन के अंदर भी पिरामिड प्रिंसिपल चलता है, ठीक है, नीचे जितने भी लोग आपके लगते चले जाएंगे उन सब का जो सम टोटल है वो ऊपर आपको मिलता चला जाएगा, उसको पिरामिड प्रिंसिपल कहा जाता है, प्रॉफिट का, बल्कि हमारे मशायख तो इस हद तक भी बयान फरमाते हैं हमारे अपने हजरत ने कि 2.5% आगे पहुंचाने के लिए अल्लाह ताला कितना देते हैं, 97.5%, 97.5% इसकी जेब में जाता है और सिर्फ 2.5% ये आगे पहुंचाता है, ठीक है, तो जिसने इल्म को 2.5% आगे पहुंचाया तो इसको अल्लाह ताला ने कितना फीसद इल्म का अता फरमाया, है 97.5%। ठीक है, तो पहुंचाने वाले को तो इतना मिलता है, इतना मिलता है, इतना मिलता है, जिसका कि हिसाब नहीं हम कर सकते। फिर इंसान इसलिए भी इल्म हासिल करे कि अल्लाह को इल्म पसंद है, मैं इल्म हासिल करूंगा तो अल्लाह की नजर में मेरी कदर व मंजिलत बढ़ जाएगी। अल्लाह की नजर में कदर व मंजिलत बढ़ जाना ये बड़ी हसीन नीयत है। इंसानों की नजर में कदर व मंजिलत बढ़ जाना ये डिपेंड करता है कि आप किस वजह से ये वाली नीयत कर रहे हैं, वरना ज्यादातर जो है ना ये नीयत गंदी नीयत है कि इंसानों में मेरी इज्जत बन जाए। हाँ, दीन की तबलीग के लिए इंसानों में मेरी इज्जत बन जाए वो एक अच्छी नीयत है, जैसे कि हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु दुआ मांगा करते थे, ठीक है, अल्लाहुम्मा जअलनी फी ऐनी सगीरा व फी अयुन अन्नास कबीरा, कि इंसानों की नजर में मेरी मेरी इज्जत बना दीजिए, मुझे बड़ा बना दीजिए, और मेरी अपनी निगाह के अंदर मुझे छोटा बना दीजिए। ठीक है, तो इसमें भी इंसानों की नजर में बड़ा बनाने की नीयत है ना, अल्लाह ताला से दुआ मांग रहा है ना, लेकिन ये किस लिए? पहले तो कंडीशन लगा दी कि मेरी नजर में मेरी नीयत, मेरी हैसियत छोटी कर दी, यानी मेरे अंदर बिल्कुल भी तकब्बुर ना आने दीजिए, बिल्कुल भी तकब्बुर ना आने दीजिए, मैं छोटा बन जाऊं अपनी नजर में। और फिर उसके बाद दूसरों की नजर में बड़ा बनाने की भी नीयत क्या है कि भाई मैं दीन का काम करूंगा, लोग मेरी बात सुन लें, ठीक है, इसलिए मेरी इज्जत बना दीजिए दूसरों की नजर में। तो इस कंडीशन के साथ ही खाली वो जायज है, अदरवाइज वो बिल्कुल ना जायज है, बल्कि शिर्क खफी के अंदर आएगा अगर कोई दुनिया वालों की नजरों में इज्जतदार बनना चाहेगा, शिर्क खफी में भी आएगा, और उसके लिए जो है ना फिर बड़ी सख्त वरीदों वाली हदीसें भी मौजूद हैं कि वो अपना ठिकाना जहन्नुम में बना दे अपना। अगला पॉइंट फरमाते हैं कि फिर इल्म इसलिए हासिल करे कि ये इल्म मारिफत का दूसरा नाम है, मैं इल्म हासिल करूंगा तो मुझे अल्लाह की मारिफत नसीब हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि इन्हीं उलूम के अबवाब के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत की अजमत की तफासील मौजूद है, अल्लाह ताला की जो ये कायनात है, अल्लाह ताला के जो निजाम है, ये निजाम कैसे चल रहा है और कैसे अल्लाह ताला जो है ना वो यानी फ्लॉलेस तरीके से और मजबूत तरीन तरीके से जो है वो इस पूरे के पूरे निजाम को चला रहे हैं, तो इससे अल्लाह ताला की मार्फत नसीब होती है, अल्लाह की पहचान नसीब होती है। ठीक है, लेकिन नीयत अगर हो अल्लाह की पहचान हासिल कर, ठीक है, तो अल्लाह ताला जो है ना वो इस इल्म को वास्ता बना करके हमें अपनी पहचान नसीब फरमा देते हैं। जिसकी नीयत होगी ऐसे करने के लिए तो कुरान मजीद और हदीस मुबारक से तो लाजमन अल्लाह की मार्फत उसको नसीब होगी, वो तो दुनियावी उलूम भी हासिल कर रहा होगा ना, उससे भी अल्लाह ताला की मार्फत उसको नसीब। इल्म हासिल करना नवाफिल पढ़ने से ज्यादा फजीलत रखता है, हदीस मुबारक में है, मन तअल्लमा बाबम मिन अल-इल्मी उमिला बिही औ लम युअमल बिही कान अफ़ज़ल मिन सलाते अल्फ रकअतिन। अल्लाहु अकबर कबीरा, कि जिस शख्स ने इल्म का एक बाब सीखा यानी एक टॉपिक सीखा, ठीक है ना, एक मौजू खाली उसने, बाब से मतलब ही नहीं, एक चैप्टर पढ़ लिया किसी बुक का, एक चैप्टर आपने पढ़ लिया, बाब जो है वो चूंकि चैप्टर्स को कहते हैं हम किताबों के अंदर, नहीं बल्कि एक टॉपिक आपने समझ लिया इल्म का, एक मौजू आपने समझ लिया इल्म का, हुआ उस पर अमल किया जाता हो या ना किया जाता हो, ठीक है, यानी थ्योरेटिकल इल्म जिसको कहते हैं ना, कि जिसके ऊपर अमल करना जो है वो हर एक के बस में भी नहीं होता, हर एक के लिए रेलेवेंट भी नहीं होता। मिसाल के तौर पर आपने जो है वो यानी क्या कहते हैं तिजारत का एक बाब पढ़ लिया, शरीयत में जो है वो तिजारत के बारे में क्या अहकाम आए, अब आपने कभी तिजारत नहीं करनी, ठीक है ना, तो आप जो है वो जो इल्म हासिल किया है तिजारत के बारे में, इस्लामिक फाइनेंस के बारे में, आपने तो कभी तिजारत करनी ही नहीं है, तो अमल तो आपने करना नहीं है उस वाले इल्म के ऊपर, तो क्या सवाब नहीं मिलेगा? नहीं, इस हदीस से क्या बात साबित होती है, फिर भी सवाब मिलेगा। राइट, अमल नहीं भी करोगे ना, क्योंकि ये वो वाला मामला नहीं है ना कि भाई ये इल्म हासिल कर लिया कि भाई झूठ जो है वो हराम है, अब उसके ऊपर अमल नहीं किया बल्कि झूठ बोले चले जा रहे हैं। राइट, ये उस किस्म के बाप की बात नहीं हो रही है, ठीक है ना, इल्मुल हाल की बात नहीं हो रही कि नमाज पढ़ना फर्ज है, ये इल्म हासिल कर लिया लेकिन नमाज नहीं पढ़ी, अमल नहीं किया उसके ऊपर, नहीं, ठीक है, बल्कि उस किस्म के अबवाब की बात हो रही है कि जिसके बारे में, जिसके अमल करना जो है तो हर इंसान के ऊपर अप्लाई नहीं होता, तो फरमाते हैं ये उसके लिए 1,000 रिकॉर्ड से अफजल है। ठीक है, इतना ज्यादा सवाब, नवाफिल से ज्यादा सवाब क्यों भाई? अगर कोई नियत करे कि ऑफिस में जो उसके ऊपर है यानी मैनेजमेंट की नजर में अल्लाह ताला उसकी इज्जत बढ़ाए, क्या ये दुरुस्त नहीं है? मैनेजमेंट की नजर में अल्लाह ताला उसकी इज्जत बढ़ाए, क्या ये दुरुस्त नहीं है? यानी आपकी मैनेजमेंट माशाल्लाह इतनी अच्छी है कि आप जो है वो कुरान और हदीस का इल्म हासिल करेंगे, तो आपकी मैनेजमेंट की नजर में आप काबिले इज्जत हो जाएंगे? या जो है वो आप अगर अपने फील्ड के का इल्म हासिल कर रहे हैं तो मैनेजमेंट की नजर में अल्लाह ताला उसकी इज्जत बढ़ा दे? नहीं, वो जरूरियात का मामला है, ठीक है? वहां पर जो है ना वो अपने रिस्क के अंदर बढ़ोतरी करने के लिए ये असबाब के दर्जे में इल्म हासिल किया जाता, ठीक है, कि भाई मैं जो वो ज्यादा क्वालिफाइड हो जाऊंगा, मैनेजमेंट जो है ना वो मुझे प्रोमोशन दे देगी, ठीक है, मैनेजमेंट के नजर में जो है ना वो मेरी वैल्यू जो है वो बढ़ जाएगी, वो मुझे आसानी से ले ऑफ नहीं कर सकेगी, ठीक है? तो ये जो है ना वो हलाल रिस्क के लिए आप असबाब इकट्ठे कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं असबाब इकट्ठा? हलाल रिस्क के लिए, ताकि हलाल रिस्क होगा तो आपका ईमान को कायम रखने का सबब बनेगा, आपके ईमान की हिफाजत का सबब बनेगा, और आपके आलो औलाद के ईमान की हिफाजत का सबब बनेगा, ठीक है? तो जरा सा अपने वो अपनी नजर को जो है ना वो हमें थोड़ा सा अगर हम वसी कर लें थोड़ा सा, और अगर ईमान अगर हमारे सर पे सवार हो जाए ना, असल में मसला सारा का सारा ही है, हमारे सर पे सवार नहीं है ईमान, ठीक है ना? काश के हमारे सर पे ईमान सवार हो जाए, ठीक है ना? तो फिर जो है ना वो मैनेजमेंट की खुशनूदी भी ईमान की खातिर, राइट, बच्चों को खाना खिलाना भी ईमान की खातिर, बीवी के साथ हंसी मजाक करना भी ईमान की खातिर, राइट, बच्चों को फुटबॉल खिलवाना भी ईमान की खातिर, राइट, काश के हम ऐसे बन जाए, फिर मसला ही खत्म हो जाएगा हमारा, ठीक है ना? अल्लाह ताला ईमान की फिक्र को हमारे सरों पे सवार फरमा, कहिए आमीन। हमारे कुछ मशायरे ऐसे भी करते हैं ना, कहिए आमीन, कहिए सुभान अल्लाह, सही है? कम अज कम दिल में ईमान आमीन तो सबको कह लेना चाहिए। अल्लाह ताला ईमान की फिक्र को हमारे ऊपर सवार फरमा दे, ठीक है? फिर गुनाहों से जो है ना वो अल्लाह ताला फिर जान भी छुड़वा देंगे। अभी तो गुनाह ही नहीं छूट रहे हैं ना, जुबान ही जो काबू में नहीं आगे दे रही है, फिक्र ही नहीं है ईमान की। खैर, तो आप अच्छा, एक पॉइंट मुझे अभी याद आ गया, ठीक है, पता नहीं वो सवाल करने वाले साहब जो है वो मौजूद हैं कि नहीं है, लेकिन अल्लाह उनको जजाए खैर अता फरमाए। उनके बहाने से जो है ना वो अल्लाह ताला ने एक बड़ा अहम पॉइंट जो है वो इस फकीर के दिल में डाला, ठीक है ना? वो आज आप सबके सामने पहली दफा बयान कर देते हैं। वो ये है कि जब आप जो है ना वो कोई मुझसे सवाल इस फकीर से बेतदबीर से अकेले में कोई सवाल करते हैं ना, ठीक है ना, तन्हाई में सवाल करते हैं, प्राइवेट मीटिंग में सवाल करते हैं, या व्हाट्सएप के ऊपर डायरेक्ट सवाल करते हैं, ठीक है ना, तो उस वक्त जो है ना वो इस फकीर की ये यानी ये फिक्र होती है कि आपको जो जवाब दिया जाए ना वो आपसे मुताल्लिक है, वो आपके मखसूस हालात से और आपके मखसूस लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग से मुताल्लिक हो, राइट, आपके बैकग्राउंड से मुताल्लिक हो, और इंडिविजुअली आपके लिए हो वो जवाब, सही है? जब आप इंडिविजुअली सवाल करेंगे, ठीक है ना, तो आप उसके अंदर फिर उमूमन जो है वो बड़े नरम तरीके से ही जवाब निकल आता है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है ना? कभी कभी जो है वो उसके अंदर डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, कभी उसके अंदर सख्ती भी हो सकती है, कुछ लोगों को डांट भी पड़ जाती है प्राइवेटली भी, ठीक है ना? लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, कुछ लोगों ने कहा है कि नहीं आप जो है ना प्राइवेटली ऐसे नहीं होते जिस तरह आप क्लास में होते हैं, है ना? क्लास में तो खूब डांट पड़ती है, प्राइवेटली तो आप इतना डांट नहीं रहे होते, एक आध एक्सेप्शन के अलावा, ठीक है? तो भाई वो आप प्राइवेटली सवाल कर रहे होते हैं ना, इंडिविजुअली सवाल कर रहे होते हैं, तो आपको आपके लिए जवाब दिया जा रहा है। लेकिन जब आप किसी कलेक्टिव सिटिंग के अंदर सवाल करेंगे, जैसे कि ये क्लास है, और ये आमतौर पर क्लासेस के अंदर ही होता है, या ये कि इवन कोई प्राइवेट मजलिस है, उसके अंदर जो है वो आपने सवाल किया, अब सारे लोग सामने बैठे हुए हैं, दूसरे लोग भी सामने बैठे हुए हैं, जैसे कि यहाँ पे ऑनलाइन दूसरे लोग भी सामने बैठे हुए हैं, तो अब जो है ना इस फकीर की ये प्रेफरेंस नहीं होती कि मैं खाली आपके जाती अहवाल के मुताबिक आपको जवाब दूं, नहीं, अब जो है ना दैट रिप्लाई दैट आंसर नीड्स टू बी रेलिवेंट फॉर ऑल द लिसनर्स एज मच एज पॉसिबल, अब मैं कर तो नहीं सकता है, मेरे बस में नहीं है कि हर सुनने वाले के लिए जो है उसको रेलेवेंट बना दूं, लेकिन मेरी कोशिश ये होगी कि उस जवाब से दूसरों को भी फायदा हो, क्योंकि ये एक कलेक्टिव सेटिंग है, ये एक इंडिविजुअल सेटिंग नहीं है। बात समझ में आ रही है? बहुत सारे दूसरे भी लोग सुनने वाले हैं, ठीक है। तो अब जब दूसरों को भी जो जवाब से फायदा पहुंचाना मकसूद, भाई आपने सवाल किया है इस वाली सेटिंग के अंदर, ठीक है ना, तो अब जो जवाब आएगा ना, तो उसके अंदर एक तो एस्पेक्ट ये होगा उसका, एक तो उसकी यानी एंगल उसके अंदर ये भी होगा कि हो सकता है उसके अंदर ऐसी भी बातें आ जाएं जिनके बारे में आप पूछना नहीं चाहते थे, आपके जहन में नहीं था वो वाला सवाल, लेकिन जवाब के अंदर वो वाला एस्पेक्ट भी आ जाएगा। अब ये अल्लाह की तरफ से होता है, मैंने कोई पहले से थोड़ी वो पढ़ लिख करके जो है वो जवाब तैयार, मुझे तो सवाल का ही नहीं पता कि आप क्या सवाल करने वाले हैं, तो जवाब का मुझे क्या पता होगा कि मैंने क्या जवाब देना है। लेकिन अल्लाह ताला ने कोई नुक्ता डाल दिया, अब आपने नहीं पूछा लेकिन मैंने तो बताना है भाई, ठीक है ना, तो अब कहने सवाल करने वाले परेशान, नहीं मैंने तो ये सवाल किया ही नहीं था, ये क्यों बता रहे हैं वाले, ये वाले ये क्यों बातें करें, भाई मैं आपके लिए बात नहीं कर रहा खाली। और दूसरी बात यह है कि उसमें फिर जो है ना वो, चूंकि अब वो उसमें बहुत सारे दूसरे एस्पेक्ट भी शामिल हो जाते हैं, दूसरे एंगल्स भी जो है वो उस क्वेश्चन से रिलेटेड शामिल हो जाते हैं, तो उसमें कभी कभी जो है ना वो कभी कभी या आप कहेंगे अक्सर औकात, राइट, अक्सर औकात उसके अंदर फिर जरा सा गर्मा गर्मी भी हो जाती है, ठीक है ना। लेकिन वो आपके सवाल के ऊपर नागवारी की वजह से नहीं हो रही है, आपके ऊपर गुस्सा उतारा नहीं जा रहा है, ठीक है ना, इल्ला माशाल्लाह कभी ऐसी सिचुएशन होती है वो सवाल करने वाले जाना वो हरकत ऐसी करते हैं जिनके ऊपर फिर वो डायरेक्ट डांट की जरूरत पड़ जाती है। अभी हम तो कहते हैं कि भाई डायरेक्ट मैसेज में सवाल लेके ताकि किसी को पता ही ना चले कि आपने सवाल किया, ठीक है ना, ताकि आपकी इज्जत भी महफूज रहे, सही है। लेकिन जो उमूमी तौर पर जो गर्मा गर्मी हो जाती है ना, वो इसलिए नहीं होती कि आपके साथ कोई नाराजगी हुई भी है या आपने जो है वो सवाल क्यों किया, इसके ऊपर जो है वो गुस्सा आ रहा है, आपको सवाल नहीं करना चाहिए था, या और कोई इस किस्म का मसला है, नहीं, बल्कि उसके साथ सो कहते ना जस्टिस करना, ठीक है, उस मौजू के साथ जो है ना वो इंसाफ करने का तकाजा ये है कि भाई दूसरे एस्पेक्ट्स को भी बयान कर दिया जाए, ठीक है। अब वो बाप का काम है कि भाई उसके अंदर से अपने लिए जो है ना वो जो फायदेमंद चीज है, जो रेलेवेंट चीज है, उसके अंदर से उसको पिक करें, और बाकी चीजों को समझने कि भाई वो किसी और के लिए बात की जा रही है, कहीं और से जो है वो कोई और ऐसी सिचुएशन सामने आई थी, किसी और का मसला सामने आया था, वो दिल में आ गया, उसको भी सामने रख करके आप जो है वो बात की जा रही है, ठीक है। तो उसके ऊपर जो है ना कोई नाराज होने की या परेशान होने की बिल्कुल भी किसी को जरूरत नहीं है। सवाल तो किसी एक ने किया था, अल्लाह उनको जदाए खैर दे, हम तो खुश होते हैं सवाल करने के ऊपर, बहुत सारे ऐसे मौजूद आते हैं, मौके आते हैं फिर जहन में कोई बात नहीं आ रही होती, कोई सवाल करता है तभी फिर उसके जवाब में कोई बात आती है, और फिर बहुत सी ऐसी बातें भी सवाल के नतीजे में अल्लाह ताला दिन में डाल देते हैं जो कि अदरवाइज नहीं आ रही होती, तो फिर तो ये तो सवाल करने वाला फिर मोहसिन हुआ ना हमारा, एहसान करने वाला हुआ ना हमारा, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरीके से देखते हैं, हुस्नु सुआली निसफुल इल्म, नबी अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी जबरदस्त और गहरी बात फरमाई, हुस्नु सुआली, अच्छा सवाल जो होता है वो आधा इल्म होता है। अब इसकी बहुत सारी तशरीहात आप कर सकते हैं कि सवाल करने वाले के लिए आधा इल्म जो है वो तो सिर्फ सवाल करने से हो गया, तय हो गया उसके लिए, बाकी आधा इल्म जो है वो जवाब से उसको मिल जाएगा, लेकिन अगर कोई कलेक्टिव सेटिंग के अंदर किसी ने सवाल किया और अच्छा सवाल किया, तो ये कितने दूसरे लोगों के लिए जो है वो इल्म का सबब बन रहा है, ठीक है। एनीवे तो ये एक नुक्ता था, काफी दिनों से मैं सोच रहा था कि भाई अभी कोई ना तो के सामने इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत है, लिखने का तो मौका नहीं मिल रहा था ग्रुप के ऊपर लिख के भेजने का, लेकिन अलहमदुल्ला आज अल्लाह ने याद दिला दिया क्लास के अंदर ही। तो आगे कहते हैं कि ये नियत भी करे कि मैं इल्म हासिल करूंगा, अल्लाह की मखलूक मेरे लिए इस्तिगफार करेगी, तो अल्लाह ताला मेरे गुनाहों को भी मुआफ़ फरमा दे, जैसे कि हदीस पाक में है, इन अल आलिमा लयस्तगफिरु लहू मन फिस समावाती व मन फिल अर्दी हत्ता अल हीतानु फिल माई, यानी आलिम के लिए आसमान और जमीन में मौजूद हर चीज मगफरत तलब करती है, यहाँ तक कि मछलियां पानी में उसके लिए इस्तगफार करती है, ठीक है। ये आलिम कौन है कि जो कि इल्म यानी इल्म नाफे उसने हासिल किया, और उमूमी तौर पर जो आलिम का लफ्ज जब हमारे दीनी जखीरे के अंदर, इल्मी जखीरे के अंदर जब लफ्ज आलिम इस्तेमाल किया जाता है ना, तो उससे कौन मुराद होता है, उससे मुराद जो है वो होता है जो कि नबी अलैहिस्सलातुस्सलाम के उलूम, जिसको उलूम नबुवत कहा जाता है, ठीक है, उनको हासिल करता है हिफाजत की नीयत से, दीनी उलूम की हिफाजत की नीयत से, कि वो उम्मत के अंदर महफूज रहे, हमारी नस्ल में भी महफूज रहे, और वो अगली नस्लों में भी बहिफाजत मुंतकिल हो सके। ठीक है ना, तो जो इस किस्म का इल्म हासिल करते हैं ना, यानी जिसको के तफसीली उलूम कहा जाता है, डेडिकेटेडली जिसको इल्म हासिल करना कहा जाता है, तो ऐसे शख्स को जो है वो आलिमे दीन कहा जाता है। ठीक है, वरना ये नहीं कि भाई किसी ने जो है वो सेल्फ स्टडी के जरिए से जो है वो 50 किताबें पढ़ ली तो वो भी आलिम हो गया, और किसी ने जो है वो 150 पढ़ ली तो वो अल्लामा हो गया, और किसी ने जो है वो 400 किताबें पढ़ ली तो वो नौजबिल्ला अलीम बन गया। ऐसा नहीं होता, बल्कि दीनी उलूम की हिफाजत के लिए जो तरीका नबी अलैहिस्सलाम का दरसो तदरीस का तरीका है, ठीक है ना, जैसे कि सहाबे कराम के साथ नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फिर सहाबे कराम ने आगे ताबईन के साथ, में ताबईन ने तबा ताबईन के साथ, और ये जो दीनी मदारिस का सिलसिला जैसे कि अस्हाब सुफा के जमाने से शुरू हुआ है, ठीक है ना, उससे पहले ये मदरसे वाला सिस्टम नहीं था, मक्का मुकरमा के अंदर प्रॉपर मदरसे वाला सिस्टम नहीं था, बोर्डिंग स्कूल वगैरह और फुल टाइम मदरसे वाला सिस्टम, वो बिल्कुल पार्ट टाइम चलते फिरते, ठीक है ना, बस दारे अरकम के अंदर थोड़ी देर के लिए जमा हो गए, नमाज पढ़ना सीख लिया, कुरान मजीद पढ़ना सीख लिया, बाकी नहीं, ठीक है। लेकिन जो फॉर्मल इल्म का सिस्टम क्रिएट किया नबी अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से, वो मदीना तैयबा आकर के ये जामिया सुपर, सही। तो अब इस नहज के ऊपर जो सही उल अकीदा और सहाबे कराम के तरीके और समझ के मुताबिक जो इल्म है उसको जो हासिल करेगा उसको आलिम दीन कहा जाएगा, ठीक है ना। तो अब जब ये मगफिरत की बात हो रही है कि जी आसमान, ये आसमान और जमीन में मौजूद हर चीज मगफिरत तलब करती है और मछलियां पानी में उसके लिए इस्तगफार करती हैं, तो इससे वही आलिम दीन मुराद होगा। आगे फरमाते हैं, इल्म अमल के बगैर वबाले जान है, इंसान को चाहिए कि इल्म हासिल करे तो उस पर अमल भी करे, वरना तो वो इल्म उसके लिए वबाले जान बन जाएगा। चुनांचे हदीस मुबारक में है, कुल्लु इल्मिन वबालुन अला साहिबिही यौमल कियामति इल्ला मन अमिल बिही। हर इल्म कयामत के रोज साहिब इल्म पर वबाल होगा, हाँ जिसने उस पर अमल किया। ठीक है ना, आप देखें बिल्कुल थोड़ी सी देर इसी सफे के ऊपर की तरफ हमने एक हदीस पढ़ी थी जिसके अंदर अमल ना किया जाता हो फिर भी जो है वो नफलों से ज्यादा सवाब मिलेगा, और इसी सफे के आखिर में हदीस पढ़ रहे हैं कि जिसके अंदर के अमल नहीं किया तो वो उसके लिए वबाल बन जाएगा, ठीक है ना। तो अब हदीसें दोनों हैं, दोनों नबी अलैहिस्सलाम के कौल हैं और एक ही जगह पे नकल भी हो रहे हैं। कौन सही है कौन गलत है, क्या है क्या नहीं है, तो भाई ये कौन समझाएगा, ये आम पढ़ने वाले को और जिस जिसका बहुत सारी फिर उसके बाद कंडीशन आ जाती हैं उसको, ये कॉन्ट्रडिक्शन, ये जो है वो इख्तिलाफ है हदीसों के अल्फाज के अंदर, लेकिन क्या ये इख्तिलाफ वाकई इख्तिलाफ है या इसके अंदर तदबीक और तरजीह की जरूरत है बात समझने के लिए, बस तदबीक कर लेंगे दोनों की या किसी को तरजीह, हाँ भाई वो किसी और मौके के लिए बात हो रही है, वो किसी और किस्म के इल्म के लिए बात हो रही है और यहाँ पर किसी और किस्म के इल्म के लिए बात हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने तो ऊपर की हदीस के अंदर ही दोनों का फर्क बता दिया था, लेकिन अब इस बात को मजीद जो है ना वो यानी समझाने के लिए, मजीद जो है वो रिपीट करने के लिए कि देखें कैसे जो है वो जाहिरी इख्तलाफात नजर आते हैं, ठीक है। तो अब जिसको इल्म की समझ नहीं होगी, गहराई नहीं होगी, वुसअत हासिल नहीं होगी, तो वो फिर बदगुमानी का शिकार हो जाएगा, या तो वो कहेगा कि ये तो यानी हदीसें जो है वो गलत नकल की हुई है लोगों ने, हदीस का लिटरेचर ही जो है वो काबिल एतबार नहीं है, या नाउज बिल्ला इससे भी बढ़ करके कोई और भी बड़ी बदगुमानी का शिकार हो सकता है कि नाउज बिल्ला सुमा नाउज बिल्ला ये क्या बात हुई, कभी कुछ कह रहे हैं और कभी कुछ कह रहे हैं, यानी लिटरेचर तो सही है, रिकॉर्डिंग तो सही हुई है, लेकिन नाउज बिल्ला कहने वाले के ऊपर शक करना शुरू हो गया, ये क्या बात हुई कि कभी कुछ कह रहे हैं और कभी कुछ कह रहे हैं, तो कितनी बड़ी बड़ी बदगुमानियां का इंसान शिकार हो सकता है और उसकी वजह से जो है ना वो ईमान से हाथ धो बैठ बैठ सकता है। साइल के हिसाब से जवाब दिया करते थे, ठीक है साइल के हिसाब से ही जवाब दिया करते थे, लेकिन मौके महल के हिसाब से जरूरी थी ना कि सवाल के जवाब में, कभी किसी खुतबे के अंदर भी तो कोई बात फरमा रहे हैं ना, किसी ने सवाल नहीं किया आपसे खुतबा, लेकिन वो खुतबा किस कॉन्टेक्स्ट में हो रहा है ना, ठीक है। तो एवरीथिंग इज कॉन्ट्रेक्चुअल। कोई भी चीज आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जो है ना वो होती ही नहीं है, और अगर उसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लिया जाएगा तो फिर नुकसान ही होगा। बस ये थोड़ा सा पढ़ के खत्म कर देते हैं क्योंकि क्लास का टाइम मुकम्मल हो गया है। इसलिए इल्म हमेशा अमल करने की नीयत से हासिल करें, यानी वो जो इल्म जिस पे अमल किया जाता है, अमल करना लाजमी है, फर्ज है, तो वो अमल की नीयत से हासिल करें, ठीक है ना। खाली जो है ना वो अपने फैक्ट्स एंड फिगर्स और अपना जो है ना वो मालूमात बढ़ाने की नीयत से हासिल ना करें। अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाह ने फरमाया करते थे कि कयामत के दिन सबसे ज्यादा अजाब उस आलिम को होगा जिसने अपने इल्म पर अमल नहीं किया, और सबसे ज्यादा अजाब तो क्या, वो सबसे पहले जहन्नुम में जो दाखिल किया जाएगा वो आलिम दीन ही होगा। मसलुल आलिम, एक हदीस मुबारक में, मसलुल आलिम अल्लज़ी युअल्लिमु अन्नास अल-खैरा व यंसा नफ्सहु कमसलिस सिराजी यضيء للناس ويخرق نفسه कि वो आलिम जो लोगों को खैर की तालीम देता हो और अपने आप को भूल जाता हो, उसकी मिसाल चिराग की सी है जो लोगों को रोशनी देता है और खुद जलता रहता है, यानी खुद आग में जल रहा होता है, और ये सजा वाली आग है, ये कोई नूर वाली आग की बात नहीं हो रही बल्कि सजा वाली आग में जल रहा है, लेकिन दूसरों को जो है ना वो रोशनी से फायदा पहुंचा रहा है, ठीक है। कुदरतन आप में से किसी एक भाई के साथ जो है वो सुबह को सवाल जवाब हो रहे थे, तो वही अपने मशायख से सुनी हुई बात कि भाई दूसरों के ऊपर जो है ना वो अगर एक छटाक मेहनत करते हो, दावत और तबलीग के अंदर अगर एक छटाक मेहनत करते हो ना, तो अपने ऊपर एक मन मेहनत करने की जरूरत, एक मन मेहनत करने की जरूरत। और मेहनत से यहाँ पे मुराद क्या है कि नफले पढ़ते रहो, राइट, मेहनत का मतलब मुराकबे करते रहो, नफले पढ़ते रहो। दूसरों को जो है वो अगर मुराकबे के लिए आपने कहा है कि 10 मिनट मुराकबा करें, तो खुद जो है वो 7 घंटे मुराकबे करो, इसका ये मतलब है? हरगिज नहीं, इसका ये मतलब नहीं है। इसका मतलब ये है कि हराम से बचने के लिए दूसरों को जितनी नसीहत करते हो ना, अपने आप को हराम से बचने के लिए उससे 1000 गुना ज्यादा नसीहत, अपने आप को 1000 गुना ज्यादा जो है ना वो अल्लाह ताला के सामने आजजी, इनकिसारी, रोना धोना, मांगना, अपनी अपनी बिल्कुल यानी अपने आप को मिटा देना अल्लाह ताला के सामने, ठीक है ना। ये दावत और तबलीग के लिए ये शराइत है, अल्लाह ताला के ऊपर नजर रखना, रुजू इलल्लाह, ठीक है, मखलूक के ऊपर नजर ना रखना कि मखलूक से तवक्कुआत ना रखना, अल्लाह ताला से जो है बस उम्मीद रखना, और अल्लाह ताला से ही मांगना, अल्लाह ताला से ही जो है वो सारे अजर की जो है वो तवक्कु रखना, ये अपने ऊपर एक मन मेहनत करने का ये मतलब है। और दूसरों के ऊपर एक छटांग मेहनत करने का मतलब ये है, यहाँ भी कभी किसी को कोई पैगाम पहुंचा दिया, कभी किसी को कोई चीज फॉरवर्ड कर दी, कभी कुछ जो है वो एक ग्रुप को जो है वो कभी, ये कभी यानी इसकी लिमिटेशन होनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली स्पेशली सोशल मीडिया के जमाने में जब ये बहुत आसान हो गया है मैसेजेस को फॉरवर्ड करना, ग्रुप पे ठक्करा, और यानी कई 100 लोगों को जो है वो एक मैसेज फॉरवर्ड कर दिया, अब लगे हुए यार मैसेज फॉरवर्ड करने के ऊपर, लगे हुए मैसेज फॉरवर्ड करने, लगे हुए उसको स्टेटस डालने के ऊपर, फेसबुक के ऊपर पेज अपडेट करने के ऊपर, और जो है वो पता नहीं कौन कौन से, इंस्टाग्राम है तो फलाना ग्राम है तो ढिमकाना ग्राम है, लगे हुए उसके ऊपर मुस्तकिल दूसरे हिदायत पा जाए दूसरे हिदायत, और अपना क्या हाल है, अभी तक सच बोलना तक शुरू नहीं किया, अभी तक झूठ तक से तौबा नहीं करी, अभी तक जो है वो नमाजें जो है वो पूरी अदा नहीं करनी शुरू करी, राइट, और फिक्र भी कोई नहीं, ये भी नहीं कि हाँ भाई मैं कितना गुनाह कबीरा का मुर्तकिब हो रहा हूँ और दूसरों को जो है वो मैं नेकी की तलकीन कर रहा हूँ, खुद गुनाह कबीरा का मुर्तकिब, फिक्र भी कोई नहीं, नहीं, इसके ऊपर जो है ना फिर वही मिसाल साबित आएगी जो इस हदीस मुबारक के अंदर है कि खुद जो ये जल रहा है अगरचे दूसरों के लिए जो है रोशनी का सबब बन रहा है, ठीक है। अल्लाह ताला हम सबको बात की समझ और उनकी तौफीक अता फरमाए, व आखिर दावाना अन अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।